अल्लाह से मदद मांगते हुए सूरत अल बकरा का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम, इस किताब के अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं, परहेजगारों को राह दिखाने वाली है। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम रखते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, और जो लोग ईमान लाते हैं इस पर जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और वो आखरत पर भी यकीन रखते हैं, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह और निजात पाने वाले हैं। ये थी सूरत बकरा की इब्तदाई 5 आयतें। इनका टॉपिक लिखेंगे फितरत की पुकार पर, लब्बैक कहने वाले। इसको समझने से पहले कुछ बातें जो आपको इन आयात को मज़ीद समझना आसान कर देंगी कि हिजरत के बाद से लेकर गज़वे बदर तक, यानी शुरू के तकरीबन 2 सालों के दरमियानी अरसे में सूरत बकरा नाजिल हुई थी। कुरान पाक की तवील तरीन सूरत है, 286 आयतें हैं। पहले निस्फ में बनी इसराइल से ख़िताब है और दूसरे निस्फ में मुसलमानों से ख़िताब है। कुछ आयतें इसमें हैं जो आपकी ज़िंदगी के आखिरी दौर में नाजिल हुई, जिसको यहाँ जमा किया गया। सूरत बकरा के नज़ूल से पहले तकरीबन 2/3 कुरान पाक नाजिल हो चुका था मक्की सूरतों की सूरत में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 13 साल मक्का में गुजारे और जो दावत और तबलीग थी, उसके नतीजे में लोगों की ज़िंदगियों में इनकलाब आ चुका था, और उस इनकलाब के नतीजे में 3 गिरोह वजूद में आ चुके थे, जिनमें से 2 गिरोह तो मक्का के ही दौर में सामने आए, लेकिन एक तीसरा गिरोह जो था वो मदीना में आया। कौन थे वो? एक पहला गिरोह वो था जो एक कश्ती के सवार थे, जिन्होंने समेना व ताना कहा। अल्लाह के नबी की जुबान से जब तौहीद की दावत सुनी तो समेना व ताना कह के, आमन्ना व सद्दकना कह के कबूल कर लिया और मुसलमान हो गए। फोकस थे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो जैसे, और हजरत जैद की तरह, और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, और इसी तरह के लोग। ये मुखलसीन थे, ये मुत्तकीन लोग थे, ये वो लोग थे कि जिन्होंने आपके पैगाम को कबूल किया और बात मानने लगे। इसके बरक्स एक दूसरा गिरोह सामने आया जो तासुब की वजह से या बाप दादा के तौर तरीकों पर डटे रहने की वजह से सरेआम आपकी मुखालफत करता हुआ दिखता है। जो आपकी दुश्मनी पे आया ये कुफारे मक्का थे, लेकिन मदीना में आते ही एक तीसरा गिरोह सामने आया, और वो कौन थे? 2 कश्तियों के सवार। हिदायत पाना भी चाहते थे लेकिन ख्वाहिशों को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। अल्लाह के भी बनना चाहते थे लेकिन अपने नफ्स के गुलाम भी रहना चाहते थे। ऐसे लोग, इनको इस्लाम में मुनाफिकीन के नाम से याद किया जाता है। ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों में हिदायत आई तो सही लेकिन ठहरी नहीं। ईमान की हक्कानियत के बगैर कलमा पढ़ने वाले लोग थे। दुनिया के फ़ायदों के लिए इस्लाम की तरफ आए, हक को पाकर नहीं आए। ये अल्लाह के लिए नहीं आए थे, ये किसी न किसी मुफाद की वजह से आए थे, और ये वो लोग थे जो किसी मसलहत की वजह से मुसलमान हो गए। इस्लाम के फ़ायदों पर अपने फ़ायदों को तरजीह देने वाले लोग। अल्लाह ताला कुरान पाक के आगाज़ में हमारे सामने इन्हीं 3 किस्म के लोगों का तज़किरा फरमाते हैं। हमने जो आयात पढ़ी, पहली 5 आयतें, ये वो लोग हैं जिन्होंने फितरत की पुकार पर लब्बैक कहा। और फितरत की पुकार क्या है? कि रब को एक मानो। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? रब हूँ। तो फिर उसको मानने वाले, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अल्लाह को पा लिया और अल्लाह की बात को पाना उनके लिए आसान हो गया। और ये वो लोग हैं कि जब अल्लाह की पुकार पे लब्बैक कहते हैं तो अल्लाह ताला अगले रास्ते उनके लिए आसान कर देता है। ऐसे लोगों को मुत्तकी और मोमिन लोग कहा जाता है। सूरत का पहला लफ्ज़ अलिफ लाम मीम हम सबको बेबस करने के लिए काफ़ी है। रसूल की ज़रूरत को महसूस करने के लिए काफ़ी है कि देखो तुम इस कलाम को क्या पढ़ोगे। अगर तुम्हें अल्लाह का रसूल ना बताता कि अलिफ लाम मीम इनको कैसे पढ़ना है, अलम पढ़ना है कि अलिफ लम पढ़ना है, या अल मीम पढ़ना है या अलिफ लाम मीम पढ़ना है। ये बात साबित हो गई कि जिस रसूल को तुम झुटलाते रहे हो, उस रसूल पे अल्लाह ने वो कलाम नाजिल किया कि जिसका पहला ही लफ्ज़ तुम उस रसूल की रहनुमाई के बगैर अदा नहीं कर सकते। और उन लोगों के पे एक गहरी चोट है जो ये कहते हैं कि कुरान की बात तो ठीक है, हदीस के बारे में सोचेंगे। और फिर उसके बाद बात होती है हुदल लिल मुत्तकीन। उससे पहले बात होती है शक की, ला रईबा, इसीलिए मैंने आगाज में जब आपके सामने एक दरख्वास्त रखी कि अपने दिल को हर शक से पाक होके सुनिए, ये इसी आयत की बेस पे बात हुई थी, क्योंकि शक जो है ना ये जिंदगी को बोझिल कर देता है, रिश्तों को दीमक लग जाती है। शक हो जाए बीवी शौहर को, बीवी को शौहर पे, या शौहर को बीवी पे शक हो जाए तो जिंदगी धोबर होने लगती है। आप खाना खा रहे हो, एक लम्हे के लिए आपको शक पड़ जाए इसमें कुछ है, जहर तो छोड़ दीजिए, सिर्फ यही शक पड़ जाए ना कि इसमें मक्खी गिर गई, तो आप परेशान हो जाते हैं। आप बहुत सारे लोगों को कुरान पढ़ते देखते हैं, और आपको शायद ये बात मालूम है कि कुरान पाक का पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन एक नॉन मुस्लिम ने किया। आज नॉन मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में कुरान पढ़ाया जाता है, कंपेरेटिव रिलीजन में इस्लाम पढ़ाया जाता है, लेकिन हिदायत क्यों नहीं मिलती? इसलिए कि ला रईब नहीं था, शक के साथ इसको सुनेंगे तो शक ही मिलेगा। और अल्लाह दिलों का मालिक बिज़ात सुदूर है, उसको पता है हमारे दिलों में क्या है, इसलिए दिल को शक से पाक करके कुरान सुनेंगे तो रंग आएगा आप पे। ये ऐसे ही है जैसे आप बर्तन में दूध डालने वाले हैं और उस दूध में पहले से थोड़ी सी छाछ थी, तो आप दूध ख़राब हो जाएगा उसकी वजह से, थोड़ा सा ऑरेंज जूस था उसमें, कोई उसमें कोई गंदगी लगी हुई थी। पहले बर्तन धोते हैं फिर चीज़ डालते हैं, हमने अपने दिलों के बर्तनों को धोना है, और हमने इस बात का यकीन रखना है कि जैसे आज से 1400 साल पहले इस किताब की ज़रूरत थी, आज भी इसी की ज़रूरत है। कल इसकी वजह से रोशनी थी, आज भी इसी की वजह से रोशनी होगी। और साथ ही फिर तकवा की बात है, हुदा लिल मुत्तकीन। तकवा क्या है? अब ये कह लें कि कुरान अगर दवा है तो तकवा परहेज़ है, और दवा के साथ साथ परहेज़ लाजमी है। असल में ये बंदा मोमिन की मांगी हुई एक दुआ कबूल होती है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की। वो दिन में 17 बार लिपट लिपट के कहता है कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। का वाकई लेना चाहते हो तो फिर आओ। जालिकल किताबु, ये है वो किताब जिसमें कोई शक नहीं, किस बात में शक नहीं कि ये अल्लाह की तरफ से है, और इस बात में शक नहीं कि इंसानियत के दुखों का इलाज ही ये है। सिसकती तड़पती परेशान इंसानियत के गम दूर करने की दवा ये कुरान है, और तकवा होगा तो फ़ायदा होगा, हिदायत वही पाएंगे जिनके अंदर हिदायत की तलब होगी। देखिए अल्लाह की ज़ात नुक्ता नवाज है, बंदे को हर लम्हे देती है। हमने नहीं मांगा हमें माँ बाप मिल गए, हमने नहीं मांगा हमें अच्छी शक्लो सूरत मिल गई, हमने नहीं मांगा हमें दौलत मिल गई, लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह बिन मांगे नहीं देता। इसके बारे में अल्लाह बड़ा गयूर है, अल्लाह की ज़ात दो चीज़ें बिन मांगे नहीं देता, उसमें से एक चीज़ हिदायत है। आज आप यहाँ क्यों बैठे हैं आके? क्योंकि आपने मांगा। आपको नहीं पता क्या आप इस वक्त किसकी दुआओं से बैठे हैं? आपको अपनी माँ की दुआ लगी है, या अपनी नानी की लगी है, या आपने बचपन से कोई दुआ मांगनी शुरू की हुई थी कि रब्बी ज़िदनी इल्मा। आप तो दुनिया के इम्तिहानों में पास होने के लिए ये वजीफे करते थे, अल्लाह ने आपकी वो दुआएं कबूल कर ली, लेकिन आपके अंदर कोई तड़प ज़रूर थी। आप में से कोई ऐसा नहीं है जो बग़ैर तड़प के यहाँ पहुँच गया। ये तड़प ही तलब बनती है, तड़प नहीं तो तलब नहीं, तलब नहीं तो तकवा नहीं, और अल्लाह ताला बिन मांगे हिदायत नहीं देता। आप मस्जिद की तरफ आना चाहेंगे तो रास्तों को कदम लगेंगे, आप सिनेमा की तरफ जाएंगे तो रास्ता उधर ही जाएगा, जहाँ आप जाएंगे अल्लाह वही रास्ता आसान करता है। दूसरी चीज़, अल्लाह ताला जो बिन मांगे नहीं देता ना, वो अपनी मोहब्बत बिन मांगे नहीं देता, ये उसका फ़ैसला है। वो बड़ा गैरत वाला है, वो हर ऐरे गैरे को अपनी मोहब्बत नहीं देता, वो उसको देता है जो उससे मोहब्बत लेना चाहता है। फिर उस रब की शान क्या है कि उसको मानो, कैसे मानो, बिलग़ैब बिन देखे मान जाओ। कल तो मानोगे, लेकिन कल का मानना देखने की बुनियाद पे होगा, आज मान जाओ बिन देखे। गोया कि आप कह सकते हैं कि आज की इस दुनिया में इंसान से तकाजा क्या है कि रब को ना देखते हुए उसकी निशानियों से पहचानो। कल क़यामत के मैदान में जब अल्लाह ताला नज़ूल फरमाएंगे तो लोग अल्लाह को देखते ही सजदों में झुकना चाहेंगे, लेकिन वो लोग जिनकी कमरें दुनिया में सजदों से दूर थीं, उनकी कमरें तख्ते बन जाएंगी, वो नहीं झुक सकेंगे। इसके बरक्स वो लोग जो दुनिया में झुकते थे, वो वहाँ भी झुकेंगे। क्यों? कि उन्होंने दुनिया में ये बता दिया था कि अल्लाह हम तुझे मान गए, और अगर कोई ये कहे कि हम कैसे माने, हम कैसे जाने कि वो है वो ज़ात है, तो वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने आप को देख लो तुम कहाँ से आए, अपने इर्द गिर्द देखो, इन नफे खल किस समावाती वलर्दी वक्त लाफिल लैली वन नहार, ये कायनात बोल बोल के बता रही है कि मुझे बनाने वाला कोई है। और है जिसने मुझे बनाया। और उसके बाद आगे आप देखिए कि हम कहते हैं कि अल्लाह तुझ पर ईमान लाते हैं। ईमान क्या होता है? ईमान मान जाने का नाम है। ईमान इंसान के अंदर सच्ची तलब के पैदा होने का नाम है। ईमान अपना सारा इख्तियार अल्लाह के हाथ में देने का नाम है। ईमान सबसे कट के रब को अपनी यादों में बसाने का नाम है। ईमान वो चीज़ है जो अमल के रास्ते आसान करती है। ईमान वो है कि जिसके नक्शे कदम पे अमल चलता है। ईमान नहीं तो अमल नहीं। जिसके अमल बढ़वाना चाहते हैं उनको ईमान की दावत दीजिए। और ये ईमान जब आ जाता है तो यही मार्फत में बदलता है। पहले याफ्त है तो बाद में फिर वो दरियाफ्त बन जाती है। और ऐसा शख्स फिर खुली आंखों से रब को देखता है कि कान न कतरा हो। फिर वो उसको रब दूर दूर नहीं दिखता। उसको इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि रब कल दिखेगा, उसको आज भी दिखता है। किसी का कॉल याद आ गया, कहते थे कि आज अगर गैब के पर्दों से बाहर आके रब सामने भी आ जाए तो हमारे ईमान में ज़रा भी इजाफा नहीं होगा। कि पहले ही इतना यकीन है, बिन देखे मान जाओ। देख लिया तो क्या देखा, असल बात तो क्या है कि अल्लाह को मान जाओ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने, अल्लाह की जब पहचान होती है ना तो फिर सर झुकने लगता है और वो यकीमुन सलात की सूरत में बदल जाता है। फिर खुद ही झुकने को दिल जाता है। जैसे दुनिया में किसी बड़े को देखे ना तो उसके आगे मरूब होते हैं, सीने पे हाथ रख रख के झुकते हैं। ये तो हमारे जैसा गोश्त पोश का इंसान है ना, हमारी तरह दिन में 2-3 बार तो रेस्टरूम में जाता ही होगा। ऐसे इंसान के सामने माथा झुकने लगे तो जिसको रब की मार्फत हो जाए, क्या वो झुकने से पीछे रहेगा? फिर वो नमाज पढ़ता है, फिर उसका रब से ताल्लुक जुड़ता है। और जो ही नमाज पढ़ता है तो साथ ही फिर अल्लाह के बंदों की मोहब्बत आने लगती है। तो मिम्मा रज़क़ना हुम युन्फिकून, वह हुकूकुल्लाह के पूरे करते करते हुकूकुल इबाद को भूलता नहीं है। और फिर उसके दिल में आजजी आती है, नरमी होती है, और ऐसा बंदा फिर बगैर किसी रुकावट के अल्लाह के रास्ते पे चल पड़ता है। ऐसा शख्स फिर दिल से तासुब को निकाल देता है और वो फिर अल्लाह की तरफ चला जाता है। अल्लाह ताला ने जाहरी दुनिया को देखने के लिए हमें आंखें दी हैं ना, कान दिए हैं, हमारे हवासे हमसे हैं। ये गलती कर सकते हैं, ये महदूद है। मसलन आप चांद को गोल देखते हैं, जब आप चांद पे जाते हैं तो आपको गोल नहीं दिखता। आज दुनिया में आप देखिए, दूर से आपको रेत दिखती है, जो पानी होती है, पानी दिखता है वो रेत होती है। इसी तरह आपकी विजन बदलती है ना। तो ये जो दुनिया की आंखें हैं ना, ये सिर्फ दुनिया को देखेंगी। गैब के पर्दों के पीछे झांकने के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत है और वो वही है। इसलिए वो लोग जो वही और रेवलेशन को नहीं मानते, वो अल्लाह को नहीं पा सकते। ऐसे लोग जो हैं फिर वो इस दुनिया में भटकते हैं और वो अपने आप को एथियस कह लें, वो अपने आप को दहरिया कह लें, ये उनकी मर्जी। लेकिन ये खुदा फरामोशी का दौर है। ऐसे लोग फिर कल जब अल्लाह को पाएंगे तो उनको पता चलेगा कि हम किस गलती पे थे। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोग जिनके सामने आखिरत एक हकीकत बन के खड़ी हो जाती है, उनको वो कल की चीज़ नहीं लगती, उनको आज की चीज़ लगती है। वो लोग जिनको आखिरत सबसे बड़ा मसला लगती है, फिर वो दुनिया के छोटे छोटे मसलों में उलझते नहीं है। वो इसमें परेशान नहीं रहते कि यहाँ क्या नहीं मिला, वो इस गम में रहते हैं कि वहाँ क्या कम है। वो यहाँ की खुशियों में महव हो के सब कुछ भूल नहीं जाते, बल्कि वो ये देखते हैं कि वहाँ भी क्या नहीं है। और इस तरह फिर आखिरत उनके दिल, दिमाग, उनकी अकल, उनकी रूह पे छा जाती है। और यकीन होता ही वो है कि जो इंसान के इरादों पे छा जाए। फिर उनकी हर सोच आखिरत ओरिएंटेड होती है। वो एक कदम भी उठाते हैं तो पहले ये सोचते हैं कि इसका मेरी आखिरत पे क्या असर होगा, मेरी वहाँ की ज़िंदगी पे क्या असर होगा। और ऐसे ही लोग जो हैं वो फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह हमें ऐसे ही लोगों में कर दे। ये वो लोग हैं कि जिनको फिर अल्लाह ताला मुफ्लहून के टाइटल से नवाजते हैं। और मुफ्लह कौन होता है? कि जिसकी दुनिया भी अच्छी हो जाए और आखिरत भी अच्छी हो, वो कामयाब होता है। वो दुनिया के मैदान में पीछे नहीं रहता। उसकी सुबह और शाम सिर्फ दुनिया के लिए नहीं होती, वो करता आखिरत के काम है और दुनिया के काम उसके खुद ही बनने लगते हैं। वो अपने गोल बड़े रखता है और छोटे छोटे गोल रास्ते में खुद ही आ जाते हैं। फिर वो अपने आप को इस दुनिया की चीज़ों में नहीं गर्क करता, बल्कि वो आखिरत के लिए तैयारी करता है। लेकिन इसके बरक्स कुछ लोग कितने बदनसीब हैं। कौन? इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। काफिरों को आपका डराना या ना डराना बराबर है, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी और इनकी आंखों पर पर्दा है और इनके लिए बड़ा अजाब है। आयत नंबर 6 और 7, इसका टॉपिक है दिल के दरवाजे बंद करने वाले। यहाँ से लेके आगे तक तकरीबन 15 आयतें वो हैं कि जो हिदायत से महरूम लोगों की हैं। ये 2 आयतें तो उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने सरेआम इनकार कर दिया, मैं न मानूँ, कुफर पे न शुक्रे सूरज निकला हुआ है और ये अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, आवाजें सुनाई दी जा रही हैं और ये कानों में रुई डाल रहे हैं। ये इस कायनात से सुबह शाम गुजरते हैं लेकिन सोचते नहीं कि ये किसने बनाया। ऐसे लोगों के पास अल्लाह का पैगंबर आ जाए या कायनात अपनी खामोश आवाज में पुकार पुकार के कहे कि कोई मुझे बनाने वाला है, लेकिन ये सिर्फ खेलते तमाशे करते वहां से गुजर जाते हैं। अल्लाह का फैसला इनके बारे में क्या है? मोहर लगा दी, स्टैम्प्ड है। क्यों? मोहर लगा के भेजा था? नहीं, फितरत पे भेजा था। लेकिन जिस मशीन से काम लेना छोड़ दें फिर वो मशीन काम करना छोड़ देती है। इन्होंने दिल से मार्फत की बातों को लेना छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने इनके दिलों के अंदर से अपनी मार्फत को निकाल दिया। इनके रवैये में टेढ़ आई, अल्लाह ने इनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। ये वो लोग हैं जिनके दिलों से नेकी की तलब ख़त्म हो गई। ये सुनेंगे सबकी लेकिन मानेंगे नहीं। इनको सारी मखलूक नज़र आती है लेकिन इनको रब नज़र नहीं आता। अल्लाह ने जुल्म नहीं किया। हिदायत और गुमराही, ये दो चैनल्स हैं और इनका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में। जिस चैनल को जो मर्जी दबा लें, हिदायत का चैनल दबाएंगे तो हिदायत की तरफ चल पड़ेंगे, उसकी तस्वीरें दिखने लगेंगी, और अगर गुमराहियों की तरफ आएंगे तो फिर गुमराही होगी। और ऐसे लोगों के बड़े मसले होते हैं, कभी तासुब होता है, कभी लाइल्मी होती है, कभी जहालत होती है, कभी दुनिया परस्ती, कहीं माल, कहीं स्टेटस। नहीं, अल्लाह को मान लिया तो फिर छोटे हो जाएंगे, फिर ज़िंदगी में पाबंदियां लग जाएंगी, और ऐसी कैफियत को अल्लाह ताला ने यहाँ मोहर से साबित कर दिया। ये वो लोग हैं कि जो दुनिया में एक ऐसा दीन चाहते हैं जो ख्वाहिश का दीन हो, और ऐसे लोगों के नसीब में फिर हिदायत नहीं होती। जब घरों में दीन आने लगता है ना तो फिर मुखालफतें शुरू होने लगती हैं। ये वही लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला हमारे सामने पेश करता है कि अल्लाह के नबी के दौर में भी ये लोग आपके सामने थे, ये आपके अजीज़ थे, आपके चचा, आपके घर वाले, आपके कजन्स थे, लेकिन इन्होंने चूक ही अपने आप को बाप दादा के बनाए हुए एक सिस्टम से निकालने की कोशिश नहीं की। अल्लाह ने इनसे तौफीक छीन ली। और इसके बाद फिर अगली बात, वमिनन नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। बास लोग कहते हैं हम अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं हैं। वो अल्लाह ताला को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन दरअसल वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मगर वो समझते नहीं। इनके दिलों में बीमारी थी, अल्लाह ने इन्हें बीमारी में मजीद बढ़ा दिया, और इनके झूठ की वजह से इनके लिए दर्दनाक अजाब है। और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना करो तो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ इसलाह करने वाले हैं, खबरदार रहो, यकीनन यही लोग फसाद करने वाले हैं, लेकिन शऊर नहीं रखते। और जब इनसे कहा जाता है कि लोगों यानी सहाबा कराम की तरह तुम भी ईमान लाओ तो जवाब देते हैं कि क्या हम ऐसा ईमान लाएं जैसा ईमान बेवकूफ़ लोग लाए, खबरदार हो जाओ, यकीनन यही बेवकूफ़ हैं लेकिन जानते नहीं। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान वाले हैं, और जब अपने बड़ों के पास जाते हैं तो कह देते हैं कि हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। अल्लाह ताला भी इनसे मजाक करता है और इन्हें इनकी सरकशी और बहकावे में और बढ़ा देता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले में खरीद लिया, बस ना तो इनकी तिजारत ने इनको फायदा पहुंचाया और ना ये हिदायत वाले हुए। इन आयात का टॉपिक है मुफाद परस्त ही दरअसल मसलहत परस्त है। इन आयात में इंसानियत के तीसरे गिरोह की बात है कि जिनका दीन फ़ायदों का दीन, मसलहतों का दीन, ये किसी एक दीन पे नहीं होते। इनका दीन क्या होता है कि जिसमें तुम्हारा फ़ायदा है वो ले लो। इनकी हकीकी वफादारियाँ सिर्फ अपने दुनियावी मुफादात से होती हैं। हक के साथ एक ज़ाहरी ताल्लुक ज़रूर कायम कर लेते हैं ताकि लोग हमें मुसलमान समझें, और इसको बड़े ही अक्लमंदी समझते हैं। इसके बरक्स वो लोग जो अल्लाह की पुकार पे लब्बई कहने वाले, एक एक पुकार पे घरों का सामान लाने वाले, इनको बेवकूफ़ दिखते हैं। ये कहते हैं ये कौन लोग हैं, देखो कैसे बातों में आ जाते हैं। और ऐसे लोगों को ये बेवकूफ़ कह के अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं कि हम हैं अकलमंद लोग। देखो दीन को भी रखो और दुनिया को भी रखो। और ऐसे लोग फिर एक ऐसा बीच का रास्ता इख्तियार करते हैं जिसको अल्लाह ताला ने बीमारी कहा, मुनाफ़कत की बीमारी, निफाक की बीमारी, दुनिया की मोहब्बत की बीमारी, शक की बीमारी। और ये वो लोग हैं कि जो अपनी इस मुफाद परस्ती में जब इस दुनिया से जाते हैं तो मुफसद बन के निकलते हैं। ये तो सोचते हैं कि हम दुनिया को एक बीच की राह दे रहे हैं, सब साथ मिलके रहे, किसी के दीन की बात ना करो, किसी के मजहब की बात ना करो, और जो कर रहे तुम भी वही करो। और ऐसे लोग खुद भी कंफ्यूज और दूसरों को भी कंफ्यूज करने वाले, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला मुनाफिक कहता है। ये वो लोग हैं कि जैसे कुछ साफ पानी के अंदर कुछ कीचड़ के कतरे डाल दें तो वो बाकी पानी भी गंदा हो जाएगा। और ये गिरोह जो था ये मदीना में उठा था, अब्दुल्ला बिन उबई इसका मुजीद था, जो अपने मुफादात की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद रखता था, रकाबत रखता था। और जब आप उधर आए तो उसने देखा कि अब और कोई सूरत नहीं है मुझे इनके बीच में दाखिल होने की, तो नाम का मुसलमान हो गया। उसको तो छोड़ दें, हम अपने आप को देख लें कहीं आज हमारी ज़िंदगी में कहीं निफाक तो नहीं आ गया। और बात ना समझ आए तो उसको समझाने के लिए मजीद अगली आयतों में और खूबसूरत तरीके से बताया गया, क्या मसलहुम का मसलिस्तौकद नारा फलम्मा अदअत्मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम वतरकहुम फी ज़ुलुमातिल्ला युबसिरून। इनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, बस आसपास की चीजें रोशनी में आई ही थीं कि अल्लाह इनके नूर को ले गया और इन्हें अंधेरों में छोड़ दिया। जो नहीं देखते बहरे गूंगे अंधे हैं, बस वो नहीं लौटते। ये आसमानी बरसात की तरह जिसमें अंधेरियां और गरज और बिजली हो, मौत से डर कर कड़ाके की वजह से अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं। अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है, करीब है कि बिजली इनकी आंखें उचक ले जाए। जब इनके लिए रोशनी करती है तो इसमें चलते फिरते हैं, और जब इन पर अंधेरा करती है तो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह ताला चाहे तो इसके कानों और आंखों को बेकार कर दे। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। इन आयात का टॉपिक है खुदाई आईने में अपना चेहरा देखो। इन आयत में दो किस्म के लोगों का जिक्र था, एक वो थे जिनका इस्लाम में दाखला ही शक की बुनियाद पे था, दिल से भी शक था, और सिर्फ जाहरी तौर पे एक लुबादा पहन लिया इस्लाम के नाम पे। ये लोग तो वो हैं जिनके बारे में अल्लाह का फैसला ये है कि वो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे, और ये वही लोग हैं जिनके बारे में आगे भी आप पढ़ेंगे सूरत निसा में आता है कि इन्नल मुनाफिकीन फी दर्की असफली मिनन नार। और ये वही लोग हैं जिनके बारे में आता है कि अल्लाह ऐसे मुनाफिकों को काफिरों के साथ जहन्नुम में जमा कर देगा। ऐसे लोगों के बारे में तो कोई शक नहीं कि जो जिनके दीन में ही शुबा है, जिनके दिल में ही शक है। लेकिन एक दूसरी किस्म के लोग भी होते हैं, मान के ना मानने वाले, जान के अनजान बनने वाले, भूल के साथ साथ भोले बनने वाले, और वो मुसलमान होते हैं कि जिनको सब पता है कि इस्लाम सच्चा दीन है, जिनको पता है कि नमाज के बगैर दीन है इस्लाम का कोई नाम नहीं, जिनको पता है कि अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह की रजा क्या है, इसके बावजूद भी अमल नहीं कर पाते। खलत अमलन सालेहन व आखिर सैया, कुछ अच्छे काम करते हैं कुछ बुरे करते हैं, एक नेकी करते हैं तो चार गुना कर लेते हैं, एक अच्छा काम हो जाता है तो चार उसके बाद बुरे काम कर लेते हैं। ऐसे लोगों को फिर अमली मुनाफिक कहते हैं। ये भेड़ चाल वाले लोग होते हैं, जो वक्त के लोग करते हैं ये वही करते हैं, ये ट्रेंड सेटर्स को देख रहे होते हैं। इनकी ज़िंदगी में दूसरे लोगों की बड़ी अहमियत होती है, ये ऐसे हैं कि जब फ़ायदे आएँ तो उसको लेने के लिए तैयार हो जाएं, और जूँ ही इस्लाम की वजह से कोई कुर्बानी देनी पड़े तो उस वक्त फिर ये पीछे हटने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये आज जितने मर्जी कामयाब हों, ये आज अपने आप को जितना मर्जी कामयाब इंसान समझें, लेकिन दर हकीकत ये कामयाब नहीं है। यहाँ इस हिस्से में हम कुछ चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। अल्लाह ताला की निशानियों पे हम बात कर रहे हैं, गो के कायनात की जो निशानियाँ हैं उसका ज़्यादा तज़किरा तो मक्की सूरतों में आएगा जो सूरत अल अनाम से शुरू होता है, लेकिन अल्लाह ताला की निशानियाँ सिर्फ कायनात की निशानियाँ ही नहीं होती। इंशाल्लाह कहीं मुनासिब मौके पे आपको पांच किस्में लिखाऊंगी कि निशानियाँ क्या हैं। इस हिस्से में आप क्या करेंगे, हाईलाइटर ले लें, कुरान पाक की आयत का लफ्ज़ बोल देती हूँ उसको अगर आप हाईलाइट कर लें। अभी तक जितना हिस्सा हमने सूरत बकरा का पढ़ा है इसमें सबसे पहले तो अल किताब, कुरान पाक खुद अल्लाह की एक निशानी है। कैसे है, 1400 साल गुजर गए, एक जबर और जेर नहीं बदली जा सकी। ये किताब एक निशानी है जो लोगों को गुमराहियों से इन रोशनियों की तरफ लाती है। ये किताब हकीकत में एक निशानी है, इसके अंदर जितना डूबते जाते हैं अमल के कितने ही रंग मिलते जाते हैं। फिर इसी तरह नमाज अस्सलात को हाईलाइट कर लीजिए, ये नमाज भी अल्लाह की एक निशानी है, क्योंकि नमाज में बंदे का रब के साथ रब्ता होता है। ये नमाज ही है जो बंदे को इस जमीन से उठा के मेराज करवा देती है उसको रब की। फिर इसी तरह मिम्मा रज़क ना हम युनफिकून, अपनी मेहनत के कमाए हुए माल को बगैर किसी मुफाद के मिले हुए खर्च कर देना, ये भी अल्लाह की एक निशानी है। आपने मर्दों को नहीं देखा, सारा दिन काम करते हैं, और अपनी कमाई का 98% घर वालों पे खर्च कर देते हैं। किसने डाला उनके दिल में? क्या ये अल्लाह की डाली हुई मोहब्बत नहीं? ये निशानी नहीं है? ये हिदायत अल्लाह दिलों में डालता है, तभी ये काम करने आसान हो जाते हैं। फिर इसी तरह अल्लाह ताला की निशानियों में एक निशानी क्या है? कुफर, ये भी एक निशानी है, अल्लाह ताला का एक इंतकाम है। क्योंकि कुछ निशानियां अजाब की होती हैं, कुछ निशानियां सवाब की होती हैं, कुछ निशानियां मार्फत की होती हैं। तो कुफर करना किसी का, ये भी एक बंदे को अल्लाह की एक निशानी बन के मिलता है कि देखो जो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला उनको फिर भी खाने पानी दे रहे हैं। फिर इसी तरह खत्म अल्लाह, ये भी निशानी है, ये भी अल्लाह का साइन है, ये अल्लाह की गैरत है। तुम नहीं आते तो ना सही, कल तुम नहीं आते थे, अब मैं आने की तौफीक नहीं दूंगा। देखिए एक वक्त वो होता है कि बंदे को बुलाया जाता है और वो नहीं आता, और फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि अल्लाह कहता है अब तुम्हें मैं आने ही नहीं दूंगा, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम मेरी तरफ आओ। फिर इसके बाद फजादहुमुल्लाहु, अल्लाह ने बीमारी को बढ़ा दिया, ये भी एक निशानी है। जब इंसान किसी चीज़ को मिसयूज़ करता है ना, तो फिर उसको अल्लाह ताला उससे ये चीज़ छीन लेता है। फिर इसके बाद वयमुद्दुहुम, आयत 16 में है, ढील देता है उनको सरकशियों में। और इसी तरह फिर इन आयात में सैयब मिनस्समा, आसमान से तेज़ बारिश का बरसना, इसको तो आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, कहाँ से आता है ये पानी, कौन है इसको फैलाने गिराने वाला। फिर रात कड़क, जब बिजली चमकती है तो दिल कैसे दहकता है, ऐसे लगता है कि कोई डांट रहा है, कोई गुस्से में है आपके पास। फिर बर्क, ये जो रोशनी है ये कहाँ से आती है। फिर इसके बाद सम इहिम और अबसार इहिम, समात और बसारत, हमारे देखने की ताकत, हमारे सुनने की ताकत, ये अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं।